Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार आप दोनों को और साथ साथ सभी सुनने वालों को।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी।
RBI keeps repo rate unchanged at 5.5%, retains GDP growth forecast at 6.5% for the current financial year, despite US tariffs. Benchmark domestic indices extend losses for the second straight session. Sensex drops over 160 points, Nifty declines by 75 points, and crude oil prices rise over 1%.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी परिवर्तन के रेपो दर को 5.5% पर बनाए रखा। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अमरीकी शुल्क लगने के बाद भी जीडीपी विकास दर 6.5% बने रहने का अनुमान व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में हुई गिरावट, सेंसेक्स 160 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 75 अंक नीचे आया और कच्चे तेल के मूल्यों में हुई 1% से अधिक की वृद्धि।
In our top story, the Monetary Policy Committee MPC of the Reserve Bank of India kept the repo rate unchanged at 5.5%, maintaining a neutral stance. RBI Governor Sanjay Malhotra announced a policy decision today.
After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility, LAF, unchanged at 5.5%. Consequently, the Standing Deposit Facility rate shall remain unchanged at 5.25% and the Marginal Standing Facility rate and the bank rate at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance.
The central bank retained its financial year 2025-26 GDP growth forecast at 6.5% despite US tariffs on Indian imports. Inflation for the year is projected at 3.1%, lower than June's 3.7%, though CPI is expected to reach 4.9% in the next financial year.
The inflation outlook for 2025-26 has become more benign than expected in June. Large favorable base effects combined with steady progress of the southwest monsoon, healthy kharif sowing, adequate reservoir levels and comfortable buffer stocks of food grains have contributed to this moderation. CPI inflation, however, is likely to edge up above 4% in Q4 of this year and beyond as unfavorable base effects and demand side factors from policy actions that we took a few months ago come into play. Barring any major negative shock to input prices, core inflation is likely to remain moderately above 4% during the year.
Siddharth Singh, once again, welcome to Market Mantra. Whenever we talk about policy rates, we are linking it to what the inflation figures are for June, 3.7%, and invariably there is always a demand that why is the repo rate not being lowered? It's still at 5.5%, it's unchanged. But the RBI has said that even though inflation will fall to 3.1%, it will go up to 4.9% next year. Could you tell us something about the negative externalities which is likely to affect inflation, which is linked to the repo rate, which is why it's unchanged?
No, Arjun, I don't think there is anything negative in the immediate context, and only positives, I would say, because if you look since February, the central bank has cut the repo rate by almost by 100 basis points, actually 100 basis points. And now the transmission also is happening because the transmission, the rates which are cut also happen. The transmission happens with a lag. So you would appreciate, and for the current financial financial year, actually inflation forecast has been brought down by RBI. They had projected 3.3, which has been now revised downwards to 3.1. So inflation for the current financial year, we are in a very comfortable zone. So I don't think there is anything for the immediate to worry. Plus, if you look at the forecast in terms of growth also, the RBI has kept the growth forecast at 6.5%. And transmission of the policy rates would also probably, as you saw the governor RBI today, Sanjay Malhotra, starting his speech by saying that wishing that the festival season, Ganesh Chaturthi, Raksha Bandhan, Janmashtami. So, no, the festival season is just beginning. And he said he hoped that probably this also brings cheer for the Indian economy. Though despite a lot of uncertainties, but if you count the domestic factors, you look at the, as he talked about inflation, GDP, external factors, you look at our FDI inflows, you look at the service exports, also the current account deficit is at very good, it's at levels which we can manage easily if you look at our forex reserves. So I think there are huge positives. The only negative, which is kind of also having an indirect impact on the Indian economy, is the external front, where you see this tariff thing going on, plus the geopolitical tensions, which continue to, you know, kind of, we're not able to, the aspiration to grow beyond, you know, to 8% levels, probably we are not able to achieve because of those things.
Well, what about oil imports? Isn't that secured with our partnership with Russia? Aren't imports going to be cheaper? Haven't they been cheaper? And will that not in some way lower inflation, which is what the projection is, a 3.1%? If you look at core inflation as well, those aspects which are not volatile or which are volatile. What is your take in terms of our trade policy and, of course, U.S. tariffs in conjunction with that?
See, Arjun, answering your first question about the oil prices, I think we have been buying cheap crude oil from Russia, and I think the way our relationship we have with the Russia, very, very old ties, not only crude oil but also very, very intense defense ties with Russia, and so, and which has been again I would say affirmed by both the nations after Trump has issued a threat to impose a very high tariff if we continue to buy crude oil from Russia. And notwithstanding cheap supplies from Russia, otherwise also, we have also said this, that there are several other sources of cheap oil available to us. And if you look at the current levels of crude oil also, the levels of around $70 per barrel is not something that is worrying for us, especially for our inflation. Plus, if you look at our inflation basket, Arjun, and this is something Mr. Malhotra also today replied in detail, that if you look at our inflation basket, it is primarily mostly constitutes of food items and items which are not so much imported. Yes, crude is an important element there, but doesn't impact our headline inflation rate so much.
यहाँ पर एक छोटा सा हम विराम लेना चाहेंगे श्रोताओं, उसके बाद फिर से अगले खबर को लेकर हम हाजिर होते हैं.
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद.
अरे नो टेंशन,
करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है.
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें.
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में. सिद्धार्थ जी, आपने अभी चर्चा में कहा कि ट्रांसमिशन, यानी 100 आधार अंकों की जो कटौती हुई उसका ट्रांसमिशन अब मिल रहा है. ये किस रूप में मिलता है और जो बैंक के उपभोक्ता हैं वो किस रूप में लाभान्वित हो रहे हैं इससे?
नहीं, बहुत अच्छा सवाल मनोज जी. मैं कहूँगा, जब मैं ट्रांसमिशन की बात कह रहा हूँ कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट, जिस रेट जिस दर पे आरबीआई बैंक्स को कर्ज देता है, तो वो उस दर को हम रेपो रेट कहते हैं। और अगर उसमें रिडक्शन हो रहा है तो आप ये समझें कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट या जो ब्याज दर है उसमें कमी आ रही है। और उन्होंने आज कहा कि हमने फरवरी से लेकर अब तक 100 बेसिस पॉइंट तकरीबन 1% रेपो रेट में कटौती की है, और जो ट्रांसमिशन हुआ है तकरीबन अभी 40 BPS। तो इसका मतलब ये समझें कि आप जब लोन लेने जाएंगे बैंक में, तो ये जो आपको ब्याज दर है वो जो है कम ब्याज दर पे आपको लोन मिलेगा, सहूलियत होगी। और बेसिकली इसका जो सीधा इम्पैक्ट है, चाहे आप वो ऑटो लोन हो, हाउसिंग लोन हो, या कॉरपोरेट्स के लिए जो लोन है, या एक्सपोर्टर्स या MSMEs, तो जो लोन है वो जो है सस्ते दर पे मिलेगा। इसका बेसिक सबसे, और आरबीआई के लिए जो सबसे बड़ी चिंता होता है जब वो रेपो रेट घटाते हैं, तो उनको ये ध्यान में रखना होता है कि कहीं ना कहीं महंगाई वो भी जो है एक सीमित दायरे में हो, कंट्रोल में हो। क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है, और ऐसा माना जाता है इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी ये है कि बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई आती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का खतरा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था, जिस तरह से हम जिस उसमें है, सेटिंग जिस तरह की है, कहीं ना कहीं ये कम्फर्ट है आरबीआई के पास कि इन्फ्लेशन भी जो है कंट्रोल में रहेगा। आने वाले जो उन्होंने एस्टिमेट दिए हैं उससे भी ये लगता है कि लास्ट क्वार्टर में कहीं हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन कहीं 4% के आसपास होगा, लेकिन अगर पूरे साल के लिए देखेंगे तो 3.1% का जो उन्होंने एस्टिमेट किया है, जो बल्कि उन्होंने घटाया है जो एस्टिमेट पहले दिया था आरबीआई। तो सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर को होगा, कॉरपोरेट्स को होगा, कंपनियों को होगा, तो इसका आम उपभोक्ता को होगा कि उसको सस्ते ब्याज दरों पर कर्ज मिल पाएगा।
द बैंक रेट इज 5.75% एंड द स्टेटमेंट फ्रॉम द आरबीआई इज सेइंग दैट दिस इज अ फाउंडेशन फॉर रेट कट्स लेटर। So when will that likely occur?
See, Arjun, that is why, as you said in the beginning, when you were reading the announcement by the governor today, that they have maintained their neutral stance. So neutral stance means it could be either side. There could be, depending on how things unfold. If you heard the RBI governor also today, while answering questions from the media persons also, he said that we will now wait and watch the how the situation unfolds over the next 2 months, and depending on how inflation behaves, how what kind of tariff impact we have from the Trump tariff imposed by Trump, and also the threat which is looming large, if he continue, as he has said that there'll be very high tariff on India if we continue to buy Russian oil, and he's also threatened us that the announcement, as he said, should have come by now. He said in the almost 24 hours have gone since he had threatened us that he'll be announcing a new higher tariff for us, for a penalty for buying oil from, crude oil from Russia. So to say that they would cut rates in future or how much, because what I would say is that already I think a large part of it has already been done by RBI. 100 basis points is a big cut, and that transmission to 40 BPS points has taken place on the credit side. But if you look at the depositor side, because RBI also has to look at the depositor side also, there the transmission is much higher, because the transmission on the depositor side is about 80 basis points. Because if you give a loan, you also give a loan based on the deposits which you have, and deposits obviously cannot be outpriced by the loans that you are giving. So there some that kind of balance also has to be there. And the neutral stance means if there is scope in future, we may cut rates. If there is a change in the environment, if we have huge impacts or negative impacts, something suddenly comes up, if you see so much of uncertainty around. So depending on that, they may also raise rates. But that is what, for now, there is a neutral stance. They will wait and watch, see the things unfolding, and then act.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में आज गिरावट हुई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 166 अंक यानी 0.21% घटकर 80,544 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 75 अंक यानी 0.1% नुकसान के साथ 24,574 दर्ज हुआ। छोटी और मझौली कंपनियों पर ध्यान दें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इन्हें थोड़ा अधिक नुकसान हुआ है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 1% की कमी आई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1.1% नुकसान के साथ बंद हुआ।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड विद मॉडेस्ट लॉसेस फॉर द सेकंड स्ट्रेट सेशन। द मार्केट सेंटिमेंट रिमेन्ड कॉशियस एज इन्वेस्टर्स असेस्ड RBI's monetary policy decision and continued concerns over US trade policies. Sensex dropped by 166 points or 0.21% to close at 80,544. Nifty dipped by 75 points or 0.31% to settle at 24,574. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange fell more than the frontline indices. The mid-cap index lost 1% and the small-cap index slumped over 1.1%.
Sensex पैक की कंपनियों पर ध्यान दें तो 30 में से 18 कंपनियां आज घाटे में रहीं। सबसे अधिक नुकसान सन फार्मा को हुआ जिसके शेयर 2.3% लुढ़क गए। टेक महिंद्रा को 2% का घाटा हुआ। बजाज फाइनेंस के शेयर 1.6% नीचे आ गए। लाभ उठाने वालों में सबसे ऊपर एशियन पेंट्स के शेयर रहे जिसमें 2.2% की वृद्धि हुई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रेंट दोनों को 0.8% के आसपास मुनाफा हुआ।
In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, barring Bankex, which managed to end with marginal gain, all other sectors ended in negative territory. Our top losers, Focused IT as well as Healthcare, both dropped over 1.7% each. IT dipped over 1.6% and Realty declined more than 1.5%.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 7 पैसे बढ़कर 87.73 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतरदिवसीय कारोबार में समाचार तैयार की जाने तक 98.5 पर चल रहा था। सिद्धार्थ जी, बाजार में आज की गतिविधि को किन अर्थों में ले रहे? कल भी थोड़ी गिरावट, आज भी हल्की गिरावट है।
मनोज जी, मुझे लगता है जो पिछले कुछ दिनों में, या मैं तो कहूँगा कि पिछले, आप कहेंगे तकरीबन पिछले 1 महीने 1.5 महीने से जो स्थिति है, जो ट्रंप साहब की जो धमकी है लगातार, एक टैरिफ का एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, वो अनसर्टेनिटी एक सर्टेनिटी में तब्दील हुई जब ये हुआ कि हम लोगों के साथ ट्रेड डील हमारी अमेरिका के साथ ना हो पाई, जबकि आशाएँ बहुत थी, बहुत नेगोशिएशंस हम लोगों ने किए, बट अंततः ये हुआ कि जब हम लोग अपनी जो बाजार हैं, खासकर जो एग्रीकल्चर मार्केट जिसकी बहुत डिमांड, जिसके लिए अमेरिका की तरफ से बहुत प्रेशर था, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या डेयरी क्षेत्र हो, तो उसके उसी समय से मैं देखता हूँ कि बाजार एक ब्रॉड कॉरिडोर में है और अभी ये अनिश्चितता और बढ़ती जा रही है लगातार, जब से ये उन्होंने बोला है कि अगर हम रशिया से क्रूड खरीदते रहेंगे तो हमारे ऊपर और हायर टैरिफ वो लगाएंगे, जो धमकी, और हो सकता है वो किसी भी समय वो अनाउंस हो वो टैरिफ लेवल। तो मुझे लगता है अभी जो बाजार में एक ब्रॉड कॉरिडोर में बाजार जो है ट्रेड कर रही है, और इसके पीछे एक और कारण आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक डिमांड है, तो मतलब ठीक है सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार, लेकिन जो निजी क्षेत्र का निवेश है या वो अभी भी पिकअप नहीं हुआ है। जो रूरल डिमांड है ठीक है वो अभी भी अच्छी है, लेकिन जो अर्बन डिमांड है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी हम तेज़ी नहीं देख रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नतीजों में दिख रही है, जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं उनमें भी आपको दिख रहा होगा कि कंपनियों के नतीजे उतने अच्छे नहीं हैं, और कुछ क्षेत्र जैसे फार्मा, आईटी, इन पे सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर यूएस की टैरिफ इस लेवल्स पे रहती हैं तो उनके ऊपर सीधे उसका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन उसके, ये सब कहने के बावजूद मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अपने मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, हम अभी भी दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ दिनों में मार्केट्स में मुझे लगता है इस तरह के एक ब्रॉड कॉरिडोर में ही मूव करेगी, और जो निवेशक हैं उनको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक बन के आएँ और आज भी शुरुआत करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा भले, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के आएँ, क्योंकि हो सकता है इस लेवल्स के बाद भी कुछ मार्केट में अभी करेक्शन आए।
More than 140 companies are reporting their first quarter results today. The challenge is not only the first quarter earnings report, but also what is going to happen in the subsequent quarters with the threats from the US government regarding tariffs. Now, the new threat is on the pharmaceutical sector as well. Are we expecting to see volatility in our markets in the short to medium term?
Arjun, markets could be volatile, but yes, I don't see a major correction coming in, because I would then say each correction we see lot of domestic investors in terms of directly participating in our markets as well as through the institutions, through mutual funds, the SIP route. Because if I would take you a little back, if you look at the COVID times, the number of deposit, the accounts that we had, DMAT accounts Indian investors had about were about 2 crores. And in last 5 years, the number is 20 crores. So the amount of the appetite of the domestic investors coming into Indian markets, Indian equity markets, and that is the reason why you are still seeing this kind of levels being sustained. Because if you look the current, the FIIs which started going, leaving the Indian markets in October, they haven't turned back to the Indian markets, but the levels have still been, we have sustained a very reasonable levels. So I don't, yes, volatility could be there, market going down, but I don't see an upheaval in Indian stock markets.
यहाँ पर श्रोताओं, हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम. विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ.
इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद.
अरे नो टेंशन,
करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है.
आज ही अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए नजदीकी बैंक शाखा या सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, या ईएनपीएस पोर्टल पर जाने के लिए ऑनलाइन www.npstrust.org.in पर लॉगिन करें.
Welcome back to Market Mantra. We were discussing about Sensex and Nifty performance today with our expert Siddharth Singh. Siddharth, all sectors were marginally corrected except BankEx. That actually went up, and there was also news of the RBI monetary policy. Apart from the policy report by the governor, are there any other technical or earnings expectations in the future from banking companies?
See, if you look at the banking companies, special, both the private as well as the state-owned banks, अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सरकारी बैंक हों चाहे वो निजी बैंक हैं, जो नतीजे आ रहे हैं मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छे हैं. बैंकों के नतीजे, उनके प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं, जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं. पिछला साल जो हमने ख़त्म किया वो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स थे, खासकर सरकारी बैंकों के. तकरीबन 1,70,000-75,000 crore का जो है एनुअल बेसिस पे सारे बैंकों, सरकारी बैंकों का मुनाफा था. और आप देखेंगे कि जो सरकार ने लगातार जो स्टेप्स लिए एनपीएस घटाने के लिए पिछले 11 सालों में, तो आज आप देखेंगे रिकॉर्ड लो लेवल्स ऑफ एनपीएस हैं सरकारी बैंक. और अब जिस तरह से जो थोड़ी जो पॉजिटिविटी भी हमको दिख रही है, उसमें उसका सिंपल रीज़न है, चूँकि आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट्स घटाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आशा है. और अब हम फेस्टिवल सीजन्स में जा रहे हैं, ऐसे टाइम पे जब लोग अपने निवेश करते हैं, चाहे नया सामान खरीदें, घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, और उसी की आशा आज प्रकट भी की आरबीआई गवर्नर जब उन्होंने शुरुआत की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उत्साह दिख रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि लोग अब थोड़ा आएंगे, आगे आएंगे. प्लस अगर आप एक और बात पे ध्यान देंगे, जो सरकार ने बजट में अनाउंसमेंट किया वो था कि आपने लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा, इनकम टैक्स का जो दर थी वो घटाई. प्लस एक और पीछे जो मुझे लगता है जल्दी अनाउंसमेंट आएगा वो होगा जीएसटी रेट्स पे, और थोड़ा रैशनलाइजेशन हो. तो मुझे लगता है ये सब स्टेप्स कहीं ना कहीं और आपको लोगों जो है ज़्यादा कर्ज लेंगे, नए सामान खरीदेंगे, निवेश करेंगे, तो उसकी वजह से ये पॉजिटिविटी दिख रही है.
बेशक श्रोताओं, दुनिया में आशंका के बादल घनेरे दिख रहे हैं, विश्व अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता दिख रहा, लेकिन अपने यहां स्थितियां अनुकूल हैं और बाजार जो आने वाला त्योहारों का मौसम है उसमें कुलाचे लेगा, ये उम्मीद अभी हम रख सकते हैं. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज बढ़त दिखी है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही 0.4% बढ़त के साथ बंद हुए हैं. उधर हांगकांग का हेंगसेंग बिना किसी परिवर्तन के बंद हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में भी कोई खास उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली चल रही थी. फ्रांस का कैक 40 और लंदन का फुटसी 100 दोनों 0.2% से अधिक बढ़त के साथ चल रहे थे. जर्मनी का डेक्स भी 0.1% लाभ में कारोबार कर रहा था.
Moving on to the U.S. stock markets, U.S. stocks ended lower on Tuesday amid tariff-related uncertainties. NASDAQ dropped over 0.6%, S&P 500 edged 0.5% down, and Dow Jones Industrial Average dipped over 0.1%. On the economic front, the U.S. trade deficit narrowed 16% in June to $60.2 billion, down from $71.7 billion in May, amid a sharp drop in consumer goods imports. According to the Commerce Department's Bureau of Economic Analysis, trade gap with China shrank to its lowest in more than 21 years to $9.5 billion in June. Siddharth Singh, the trade deficit has certainly come down. Imports have been avoided as far as the policy is concerned. But tell us about the employment figures for the month of June in the U.S., only 73,000. What is the state of the U.S. economy right now, good or bad?
Very difficult to say. If you look at, if you go by the Fed estimates, I think they are also still not sure which way the economy is going. If you look at the labor data, obviously it was disappointing. And that is what led to Mr. Trump throwing, the person who prepares this data responsible was thrown out by him. And I think still it is difficult to say, obviously, but inflation in US is expected. And the trade data that you talked about China, because I think everybody, whatever exports were to be done, were done earlier only because of the threat of the tariffs. So I think we should not read too much into this one-month data.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. राज्यसभा ने आज समुद्र माल परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया. ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है. ये विधेयक भारतीय समुद्र द्वारा माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा. इसका उद्देश्य बंदरगाह से माल ले जाने के मामले में उत्तरदायित्वों, देनदारियों, अधिकारियों और उन्मुक्तियों को स्थापित करना है. ये कानून केंद्र सरकार को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है. वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर मेथड्स एंड केस स्टडीज नामक पुस्तक का लोकार्पण किया. ये पुस्तक हथकरघा उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को मापने और कम करने के लिए स्पष्ट व्यवहारिक तरीके प्रदान करके पर्यावरण के प्रति जागरूक हथकरघा उत्पादन और सतत विकास के देश के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.
Moving on to the crude oil market, crude oil prices rebounded today amid President Trump's renewed tariff threat over India's imports of Russian oil. Brent crude was trading over 1.4% up at $68.62 per barrel, and WTI crude was also trading 1.5% up at $66.14 per barrel when reports last came in.
Lage haath sone ka haal bhi hum jaan le.
In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading over 0.5% down at 1,900 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.1% down at 1,13,680 rupees per kilogram a short while ago.
MCX की ओर चलें तो अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर आपूर्ति वाला सोना 0.5% घटकर 1,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं सितंबर आपूर्ति वाली चांदी 0.3% कमी के साथ 1,13,140 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे. और बस यहीं पर हम श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
थैंक यू.
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 5.5%, रिटेन्स जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट एट 6.5% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर डिस्पाइट यूएस टैरिफ्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एक्सटेंड लॉसेस फॉर द सेकंड स्ट्रेट सेशन. सेंसेक्स ड्रॉप्स ओवर 160 पॉइंट्स. निफ्टी डिक्लाइंस बाय 75 पॉइंट्स. एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 1%. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ. गुड बाय. Market Mantra.
Market Mantra.